بالظبط. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرفت القرآن جلد نمبر 5 سے، اور آیات جن کے معروف مسائل ابھی چل رہے ہیں وہ 18 سے 21، جن کا ابھی تلاوت کی گئی. تو اس میں پیچھے معروف مسائل ہم نے شروع کر لیے تھے پچھلے ہفتے میں، اور اس میں حضرت نے اس میں حکمت بتائی تھی، بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے من کانا یرید العاجلتا جو ہے وہ صیغہ، وہ ٹینس کیوں استعمال کیا، اور من اراد الاخرہ کا لفظ کیوں استعمال کیا، فرق کیا ہے ان دونوں میں. ٹھیک ہے، تو ایک میں جو ہے وہ فعل مضارع استعمال کیا، دوسرے کے اندر فعل ماضی استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی کو وہ سننا ہو تو پھر پچھلی کلاس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہوتی ہے، جس میں بس آخری ایک پوائنٹ یہ رہ گیا تھا کہ یہ جو حضرت نے فرمایا آخری پیراگراف میں کہ پہلا حال صرف کافر منکر آخرت کا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں، کیونکہ وہ ہر عمل کے اندر ہی دنیا کی نیت کرتا ہے، جلدی کی نیت کرتا ہے، آخرت کی نیت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہوتا، تو وہ کیوں آخرت کی نیت کرے گا. ٹھیک ہے، اور دوسرا حال جو ہے وہ مؤمن کا ہے، یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں میں سب سے یعنی بنیادی بات، ٹھیک ہے، سب سے بنیادی باتوں میں سے ایک وہ ہے آخرت کے اوپر ایمان. ٹھیک ہے، سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ توحید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کی سب سے بنیاد، سب سے بڑی بنیاد ہے. دوسری بنیاد ہے آخرت. ٹھیک ہے، کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہونا ہے اور وہاں پر حساب کتاب ہوگا. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے ان دونوں باتوں کے اوپر یعنی یقین رکھنا ہے، ان کے بغیر تو پھر بات آگے ہی نہیں بڑھ سکتی. تو یہ شخص جو ہوتا ہے نا وہ مومن ہوتا ہے، تو اس کا وہ عمل جو اخلاص نیت کے ساتھ آخرت کے لیے ہو اور باقی شرائط بھی موجود ہوں وہ مقبول ہو جائے گا، اور اس کے بھی جس عمل میں اخلاص نہ ہو یا دوسری شرطیں مفقود ہوں وہ مقبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو بڑا سمپل سا سیناریو یا بڑی سمپل سی ایکویشن جو ہے نا وہ پیش کر دی گئی ہے کہ بھئی جس میں آپ آخرت کی نیت کریں گے اور ظاہر ہے دوسری شرطیں بھی اس کے اندر پوری ہوں گی، ایمان والی شرط، ٹھیک ہے، تو آپ کا وہ عمل قبول ہو جائے گا، اور جس میں آپ نہیں کریں گے وہ قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہمارا ایک ایٹیچیوڈ یہ بنا ہوا ہے، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارا یہ ایٹیچیوڈ بنا ہوا ہے کہ ہر کام میں آخرت کی نیت کو جو ہے نا وہ ہم نہ صرف یہ کہ بہت مشکل سمجھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ اس قسم کا بھی بن گیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ کچھ عجیب قسم کا کہتے ہیں نا بورنگ بورنگ ایٹیچیوڈ، بور ہو جانا، سمجھتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں نا بور ہو گیا، یہ تو بڑا بورنگ کام ہے، یہ تو بڑا جو ہے نا وہ پھیکا کام ہے، یہ تو بڑا جو ہے نا وہ یعنی بے لطف کام ہے، بے لطف، اس کے اندر تو کوئی لطف ہی نہیں، اس کے اندر تو کوئی مزہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو آخرت کے لیے نیت کر کے کام کرنا اس کو ہم بے مزہ، बे लुत्फ और बोरिंग समझते हैं, ठीक है ना। और ये हमें कब पता चलता है, ये उस वक्त पता चलता है कि जब हमें इसकी तलकीन की जा रही हो, कोई ऐसी बात कर रहा हो ना, तो लोग उखड़ जाते हैं, लोग उखड़ जाते हैं और वो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे रेस्पॉन्ड करते हैं कि क्या मुसीबत है तुम्हें, हर काम के अंदर यही यही एक ही तरीका, हर काम के अंदर यही याद आता रहता है ना। भाई दीन जो है वो उसको अपनी हद में रखो, हमारी क्या एटीट्यूड है कि दीन को उसके हद में रखो। दीन की हद क्या है, मुसल्ला, ठीक है ना, जानेमाज जो है ना, ये दीन की हद है। तो दीन को जो है ना जानेमाज तक रखो, घर के बाकी कामों के अंदर, जिंदगी के बाकी शोबों के अंदर जो है ना वो इसको घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी शोबे अपनी मर्जी से करो, है ना, जरा एंजॉय करो, जरा तफरी करो, जरा मजे करो, राइट, जरा जो है वो हल्ला गुल्ला करो, जरा जो है वो क्या होता है, शुगल मेला, हाँ पंजाब में कहते हैं शुगल मेला, ठीक है ना, जरा शुगल मेला करो, जरा तफरी, है ना। ये क्या हर चीज के अंदर जो है वो मौलवीपन, इसको हमने फिर मौलवीपन का भी नाम दे दिया, ठीक है, ताकि वो सुनने में भी जरा बुरा लगे, ठीक है। मनमर्जी करना तो फिर वो होगा ना, इसमें तो फिर अपनी गलती जरा नजर आती है कि ये तो मनमर्जी कर रहा है, ये तो एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है। तो हमने उल्टा उनके ऊपर डाल दिया, नसीहत करने वालों के ऊपर डाल दिया कि ये तो मौलवीपन, तुम हर चीज के अंदर घुसेड़ देते हो, हर चीज के अंदर तुम घुसेड़ देती हो, हर चीज के अंदर जो है ना वो दीन दीन दीन, एक तुमने जो है ना वो मुसीबत बना के रखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा एटीट्यूड बन गया है, ठीक है। कैसे बना, क्यों बना, ये आपको पता है कि क्यों बना, अब तक तो इंशाल्लाह पता चल चुका होगा कि क्यों बना एटीट्यूड, लेकिन बन चुका है। तो इस वजह से जो है ना ये कॉन्सेप्ट ही हमें हजम नहीं होता कि क्या हर चीज के अंदर आखिरत की नीयत, हर काम में आखिरत की नीयत, ये क्या मुसीबत है भाई। लेकिन नहीं, ऐसा ही है। अब आप माने ना माने, आप उसको मुसीबत समझें, आप उसको जो है वो बोझ समझें, आप उसको जो भी समझें, ये आपका मसला है, दिस इज योर प्रॉब्लम। लेकिन अल्लाह ताला ने यही हकीकत बनाई हुई है और ये हकीकत कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें बता दी है, ठीक है ना। अब सिंपल एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है हमारे लिए कि अगर आखिरत का सवाब चाहते हो ना, तो आखिरत की नीयत करो तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, वो अमल तुम्हारा कबूल नहीं होगा, बेकार हो जाएगा तुम्हारा वो अमल, ठीक है ना। जैसे अभी हम क्लास बैठ के पढ़ रहे हैं ना, कुरान मजीद की तफसीर जो है वो सुन रहे हैं ना, अगर इसमें आखिरत की नीयत की हुई है तो ये अमल कबूल होगा, अगर नहीं की हुई है तो आप बेशक बैठ करके 1.5 घंटा भी सुनते रहें, आप जो है वो एक से एक जो है वो आपको नुकात आपके जनरल नॉलेज के अंदर इजाफा होते रहें, ठीक है ना, लेकिन कबूल नहीं होगा, ये कबूल नहीं होगा, ये रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ये रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तफसीर क्लास को अगर आप कबूल करवाना चाहती हैं तो आखिरत के सवाब की नीयत से, अल्लाह की रजा की नीयत से करें, अगर नहीं कर रही बल्कि किसी और चक्कर में कर रही हैं, मेरे मार्क्स आ जाएंगे या मेरे जो है वो जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है, या जो है वो कोई और किस्म के मुझे फायदे हो जाएंगे, लोग मुझे अच्छा समझना शुरू हो जाएंगे, मैं लोगों के दरमियान बैठूंगी तो मैं ये तफसीली नुकात बयान करूंगी तो मेरी वाह वाह होगी, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है ना। एनी वन हु इज डूइंग इट इज वेस्टिंग हिज और हर टाइम, ठीक है। बल्कि जैसे कि पीछे भी बात हो चुकी है कि दीन का जो काम होता है ना, उसको अगर दुनिया की नीयत से किया जाए तो सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि उसके ऊपर अजाब होता है, सजा होती है उसके ऊपर, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तअल्लमा इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह, कि वो वाला इल्म जिसने हासिल किया ना, जिससे कि अल्लाह की रजा हासिल करनी की जाती है, जिससे कि अल्लाह की रजा हासिल की जाती है, ठीक है। ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब बिही अरदा मिन अद्दुनिया लम यजिद अरफल जन्नति यौमल कियामा, ठीक है, के जिसने के उसको नहीं हासिल किया सवाय इसके के दुनिया का कोई हिस्सा हासिल करने के लिए, उसने दीन का इल्म हासिल किया दुनिया हासिल करने के लिए, तो वो कयामत के दिन जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू कितनी दूर तक जाएगी हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते, जन्नत कितनी बड़ी है, उसके अंदर कितनी खुशबू है, कितनी उसकी जो है वो हवा है, उसकी कितनी उसकी ठंडक है, ऐसे शख्स जो है ना वो जन्नत से इतना दूर रखा जाएगा कि ये उसको उसको वहां की रीह भी नहीं मिलेगी, हवा भी नहीं मिलेगी, खुशबू भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब जो है ना मसला ये है कि अगर 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 हम तैयार हो भी जाते हैं कि हम अच्छा हम हर अमल में आखिरत की नियत करेंगे, तो अब जो है ना दूसरा मसला क्या पड़ता है, ठीक है, अगर हम बोरियत होरियत के मसले जो है ना वो उससे तौबा कर लें कि हमने दीन को बोरियत बनाया हुआ है, दीन को जो है वो मुसीबत बनाया हुआ था, हमने कहा नहीं 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 अल्लाह अल्लाह अल्ला माफ करे, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अब नहीं करूंगी ऐसा, ठीक है ना। तो अब उसके बाद अब क्या हम हर अमल के अंदर आखिरत की नियत कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर अगला स्टेप ये आता है या अगली जो है वो क्या कहते हैं मुश्किल ये आती है वो ये कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें, हाउ कैसे, ठीक है ना, कि किसी काम को हम आखिरत का काम कैसे बना सकते हैं, आखिरत का फायदा इसमें कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना वो इल्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, बिकॉज हाउ या कैसे का जो जवाब है ना वो इल्म से इंसान को मिलता है। और ये इल्म जो है ना ये इसका मतलब ये नहीं है कि आलिम आलिमा बन जाओ, आलिम बन जाओ, नहीं, ये इल्म जो है ना वो आलिम बनने और आलिमा बनने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। ये इल्म जो है वो हमें अल्लाह वालों से मिलता है, ठीक है, नेक लोगों की सोहबत, नेक लोगों की बात जो है वो सुनना, गौर से सुनना, समझना और उनकी सोहबत इख्तियार करना, या उनकी जो है वो किताबी सोहबत इख्तियार करना, ठीक है ना, यानी उनकी लिखी हुई किताबें जो है वो उनको इसी नीयत से पढ़ना कि मैं इसका इल्म हासिल करूं कि कैसे मैं अपने हर काम को आखिरत का काम बना सकती हूँ, ठीक है ना। इस नीयत से अगर अल्लाह वालों की किताब भी पढ़ेंगे ना तो वो भी अल्लाह वालों की सोहबत ही होगी, वो भी अल्लाह वालों की सोहबत ही कहलाएगी, और उससे जो है ना फिर ये वाला इल्म हासिल हो जाएगा कि मैं अपने कैसे हर अमल को आखिरत के लिए कबूल करवा लूं, ठीक है। तो चंद बातें आपके सामने रखी हैं, एक तो ये जो हमारा ये मिजाज बना हुआ है इसमें ये इंतहाई नुकसानदेह मिजाज है, ठीक है, इससे हमें तौबा करनी है, ठीक है ना, इससे हमें तौबा करनी है। और दूसरी बात ये है वो ये कि हर अमल आखिरत के अमल बनाया जा सकता है, हर जाहिर वो अमल जो है वो शरीयत के मुताबिक भी होना चाहिए, कोई गैर शरीय अमल आखिरत का अमल नहीं बनाया जा सकता। तो हर शरीय अमल जो है ना जो कि आप जायज तरीके से कर रहे हो वो आखिरत का अमल बनाया जा सकता है, उसके लिए जो है वो बस नीयत रखनी होती है। आगे चलें कि बिदअत और खुदराई का अमल कितना ही अच्छा नजर आए मकबूल नहीं। बिदअत की क्या तारीफ है कि दीन के अंदर किसी चीज का इजाफा कर दिया जाए उसको दीन समझ करके, ठीक है, दीन के अंदर किसी चीज का इजाफा किया जाए उसको दीन समझ करके, ठीक है, तो उसको जो है वो बिदअत कहते हैं। यानी आप दीन के अंदर जो है ना वो किसी चीज का इजाफा करें लेकिन उसको आप दीन ना समझें, ठीक है, तो फिर उसको बिदअत नहीं कहते। दीन के काम में किसी चीज को आप ऐड करें लेकिन उसको आप दीन ना समझें तो फिर उसको बिदअत नहीं कहते। मिसाल के तौर पर कि मस्जिद के अंदर जो है ना वो अजान होती है, ठीक है, तो अजान जो है वो पहले कैसे होती थी कि लोग ऊंचाई के ऊपर चढ़ते थे मीनार या छत, ठीक है, और वहां से जो है वो अजान देते थे, तो अजान की आवाज जहां तक पहुंचती थी तो वहां लोग जो है वो सुन करके फिर मस्जिद की तरफ आ जाते थे, ठीक है ना। अब जो है वो काफिरों ने लाउड स्पीकर ईजाद कर लिया, ठीक है ना, ये मुसलमानों की इजाद तो नहीं है लाउड स्पीकर, ठीक है, काफिरों ने लाउड स्पीकर इजाद कर लिया कि उसके अंदर आप अगर कोई बात बोलें तो वो दूर तक जाती है। तो अब उस लाउड स्पीकर को जो है वो मुअज्जिन साहब ने भी कहा कि जी मैं भी इस्तेमाल करता हूँ लाउड स्पीकर को, मेरी आवाज जो है वो दूर और मजीद दूर तक चली जाएगी, ठीक है ना, अब मुझे जो है वो सबसे ऊंचे मीनार के ऊपर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीढ़ी चढ़ूं इतना ऊंचा जाऊं फिर उसके बाद जो है ना वो मैं वहां से अजान दूं। बल्कि पुराने जमाने में तो मस्जिद के अगर चार मीनार होते थे ना तो वो चारों मीनारों के ऊपर जो है वो चार बंदे खड़े होते थे और फिर वो एक वक्त में जो है ना वो अजान देना शुरू करते थे और ऐसे देते थे कि उनकी आवाजें आपस में टकरा करके मजीद दूर तक जाए, यानी एको क्रिएट हो जाए। तो इतनी मेहनत की जाती थी एक दफा अजान देने के लिए। तो अब मौजिन साहब ने सोचा कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करो, एक ही मौजिन जो है ना वो इतना दूर तक उसकी अजान पहुंच जाएगी। तो ये जो लाउड स्पीकर है ये किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है? दीन के काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, ठीक है, दीन के काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये बिदत है कि दीन के अंदर आपने जो है वो लाउड स्पीकर को ऐड कर दिया? क्या ये बिदत है? हाँ ये बिदत है अगर आप लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को जो है वो सुन्नत कहना शुरू कर देंगे कि भाई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना तो जो है सुन्नत है, तो जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहा है वो सुन्नत पे अमल कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो जो है वो सुन्नत को तर्क करने का मुजरिम हो रहा है, ठीक है। तो अब ये लाउड स्पीकर जो है वो बिदअत बन जाएगा, ठीक है, कि आपने कहा कि भाई जो कर रहा है वो सुन्नत पे अमल करने वाला है, और जो सुन्नत जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर रहा वो तो गुनाहगार है, ठीक है। अगर आपने लाउड स्पीकर के बारे में ये सोचना शुरू कर दिया तो लाउड स्पीकर बिदअत बन जाएगा, और अगर लाउड स्पीकर के बारे में ऐसे नहीं आपने सोचा बल्कि लाउड स्पीकर जो है वो मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अच्छी बात है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो कोई गुनाहगार भी थोड़ी हो रहा कि वो लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो ये बिदअत नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से बेशुमार और मिसालें भी दी जा सकती हैं कि जैसे कि वो ईद मिलादुन नबी के ऊपर चिरावा करना, और जो है यानी और इस तरह की क्या क्या चीजें होती हैं, हलवा बनाना, ठीक है ना, अभी 11वीं शरीफ का जो है वो हलवा बना रहे हैं या पता नहीं कौन सी शेरीनी बांट रहे हैं, तो दूध जो है वो, और उल्टी सीधी इस किस्म की, अभी कल कल गालबन किसी ने आप में से लिखा था कि वो पता नहीं मंगल के दिन जो है वो काम करना जो है ना वो गलत है ना। अब वो जो मंगल को किसी ने कोई काम कर लिया ना तो वो उसको बड़ा जो है वो मुजरिम समझना शुरू हो गए या गुनाहगार समझना शुरू हो गए, भाई ये कहाँ से आप लेकर के आ गए कि मंगल को जो अगर कोई काम किसी ने किया तो फिर वो गुनाहगार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिदत है, ठीक है। तो बिदतें जो होती है ना ये दीन के अंदर नई चीज को दाखिल करना, किसी चीज को जो कि फर्ज नहीं है दीन के अंदर उसको फर्ज समझ लेना। फर्ज की क्या तारीफ होती है कि जो करेगा उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको गुनाह मिलेगा, ये फर्ज होता है। वाजिब भी यही चीज तकरीबन, वाजिब भी यही तारीफ होती है। अब आपने किसी अमल को इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया कि जो कर रहा है उसको सवाब मिल रहा है, जो नहीं कर रहा उसको गुनाह मिल रहा है, ठीक है, तो वो अमल जो है वो बिदत हो जाएगी, वो अमल बिदत हो जाएगा, ठीक है। तो वो बेशक देखने में कितना ही अच्छा नजर आ रहा हो, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर नक्शबंदी सिलसिले में आपने सुना होगा मुराकबा करना, ठीक है ना, मुराकबा करना, तो मुराकबा करना जो है कोई सुन्नत नहीं है, और मुराकबा करना जो है ना ये कोई फर्ज ना फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत है, ठीक है। लेकिन आप जो है ना वो मुराकबा जो करता है ओहो ये तो बड़ा जबरदस्त नेकी का काम करता है, और जो मुराकबा नहीं करता ना वो तो गुनाह का काम करता है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे मुराकबे के बारे में तो आप जो है ना फिर मुराकबे को बिदत बना देंगे, ठीक है, हालांकि मुराकबा जो है ना फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत है, ठीक है, तो आप क्यों उसको फिर फर्ज वाजिब और सुन्नत वगैरह के दर्जे में रख रहे हैं, ठीक है। तो इस अच्छा अब देखने में मुराकबा बड़ा अच्छा काम है, देखो जी अल्लाह की याद में बैठा हुआ है और जो है ना वो इतना अच्छे से जो है वो सुकून से बैठा हुआ है, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है मुराकबा करते हुए, ठीक है ना, नहीं, कितना ही अच्छा नजर आए मुराकबा, लेकिन अगर आपने उसको बिदत बना दिया है ना तो वो मकबूल नहीं है, वो मकबूल नहीं है, ठीक है, और उससे आपको फायदा हासिल नहीं होगा बल्कि आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शेख साहब जो है वो किसी को मुराकबा करने के लिए कहें और फिर वो मुराकबा ना करे तो फिर जो है ना वो शेख साहब को उसको डांटने की इजाजत नहीं है, नहीं, वो अलग चीज है। डॉक्टर ने किसी को दवा देनी है, ठीक है, डॉक्टर किसी को दवा देता है तो वो डॉक्टर दवा के ऊपर भाई कहता है ना, एम्फेसिस करता है ना कि तुम दवा इस्तेमाल करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा, तो उसका मतलब है कि डॉक्टर ने दवा को जो है वो बिदत बना दिया, नहीं, डॉक्टर ने दवा को बिदत नहीं बना दिया, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का एक अलग काम है, हम तो आम अवाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अवाम ने जो है वो किसी अमल को जो है ना वो फर्ज के दर्जे के ऊपर रख दिया, अवाम डॉक्टर कोई थोड़ी होती है, किसको किसने बनाया अवाम को डॉक्टर, अवाम डॉक्टर कोई थोड़ी होती है कि वो जो है वो किसी दवा को जो है वो फर्ज करार दे दे। आप अच्छा किसी ने एक मैसेज लिखा है, उन्होंने प्राइवेट मैसेज में ये सवाल लिखा था, लेकिन प्राइवेट में वैसे भी उन सवालों का जवाब देना मुश्किल होता है। अगर आप बता दें बरेलवी और देवबंदी का फर्क, जबकि बरेलवी भी कहते हैं कि वो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, ये फिका के इमाम है, फिका के, ठीक है, जैसे इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, उसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। तो फिका के अंदर जो है ना, वो ये फिका को मानना एक अलग चीज है, और बरेलवी और देवबंदी ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो जो लोग देवबंदी कहलाते हैं, यानी मदरसा एक देवबंद, एक शहर है छोटा सा, ठीक है, कस्बा है इंडिया के अंदर, वहां पर एक मदरसा है, दारुलूम उसका नाम है, उलूम का घर, दारुलूम, ठीक है ना। चूंकि वो देवबंद के कस्बे में है, तो उसको वो दारुलूम देवबंद कहें, जैसे कि कराची के अंदर मदरसा है, तो दारुलूम कराची कहना शुरू कर दिया उसको, ठीक है। तो अब उससे जो है वो एक नस्बत बन गई कि जो वहां से पढ़ के निकला है तो वो देवबंदी कहलाता है, जैसे ये जो दारुलूम कराची से पढ़ के निकला तो उसको कराची भी कहते हैं, दारुल ये कराची है भाई, ठीक है, या कोई और लाहौरवी, लाहौरी, अहमद अली लाहौरी, है ना। तो ये देवबंदी इसको कहते हैं। बरेलवी का जो लफ्ज है, तो वो बरेलवी का लफ्ज वहां से निकला कि जी एक एक देवबंद के ही एक स्टूडेंट थे, ठीक है, और उन्होंने जो है ना वो बाद में जाकर के अकायद में तब्दीली कर दी, ठीक है ना, उन्होंने जो है ना अकायद और आमाल के अंदर तब्दीली करके बिदतें उसके अंदर ऐड कर दी, बिदतें ऐड कर दी उसके अंदर, ठीक है। अब उन साहब को जिन लोगों ने उनको अपना इमाम मान लिया, और उनकी जो उन्होंने आमाल में एडिशंस करी हुई थी, और अकायद में उन्होंने जो तब्दीलियां करी हुई थी, जिन्होंने उनकी बात मान ली और उनके मुताबिक जो है वो अमल करना शुरू कर दिया, तो उनको बरेलवी कहना शुरू कर दिया गया, उनका नाम जो है वो बरेलवी पड़ गया, ठीक है ना। ये नाम पड़ जाते हैं, ये नाम कोई ऊपर वही से नाजिल नहीं होते, बल्कि ये नाम पड़ जाते हैं, जो एक खास तरीके से कोई काम करना शुरू कर दे या किसी को फॉलो करना शुरू कर देना, तो उसको उसकी जो है वो नस्बत बन जाती है। जैसे इमाम अबू हनीफा को फिका में जो फॉलो करता है तो वो हनफी कहलाते हैं ना, जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करता है वो शाफी कहलाता है, और मालिकी और हम्बली। उसी तरीके से जिन्होंने जो है वो दारुलूम देवबंद के असातिज़ाए कराम के ही अकीदे को और उन्हीं के अमल को फॉलो किया, वो देवबंदी कहलाते हैं, और जिन्होंने जो है वो क्या नाम था उनका, रजा शाह, ठीक है, इमाम रजा शाह नाम था ना जिनको, वो कहते हैं क्या कहते हैं उनको, आला संत, आला हजरत, ठीक है, उनको ये आला हजरत कहते हैं। तो आला हजरत साहब के जो है वो तौर तरीके जो है जिन्होंने फॉलो करने शुरू कर दिए, तो उनको जो है वो बरेलवी, क्योंकि वो बरेली के रहने वाले थे गालबन इंडिया के, अहमद रजा बरेलवी, आला हजरत अहमद रजा बरेलवी, ठीक है। तो वो फिर बरेलवी कहलाना शुरू हो गए। तो ये फिका के अंदर, तो ये यानी फिका के अंदर फॉलो करना इमाम अबू हनीफा को मतलब क्या है कि भाई नमाज में जो है ना, वो जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये थी कि ऐसे हाथ उठाते थे और ऐसे हाथ बांधते थे, और ऐसे जो है ना वो रुकू से जब खड़े होते थे तो रफा यदैन नहीं करते थे, ठीक है ना, और बहुत सारे दूसरे मामलात के अंदर भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी तहकीक के बाद बताया कि भाई सुन्नत का तरीका ये है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है, ठीक है। तो वो जो भी फॉलो करे तो उसको हनफी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना बरेलवी और देवबंदी जो फर्क है ना, ये हनफी के अंदर ही नीचे जा करके फर्क है, ये मजीद फर्क बन गए, ठीक है। तो इसका ताल्लुक जो है वो हनफी फिक और शाफी फिक से नहीं है इसका ताल्लुक, इसका ताल्लुक जो है ना वो नीचे जा करके, जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन है, ठीक है ना, तो अब उनके अंदर नीचे जा करके मजीद फर्क ये है कि भाई कोई डॉक्टर जो है ना वो कहता है कि जी मेडिसिन जो है ना वो इस तरीके से इस्तेमाल करने से ज्यादा फायदा होता है, दूसरा को डॉक्टर कहता है नहीं इस तरीके से इस्तेमाल करने से ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो है तो दोनों ही डॉक्टर्स, लेकिन उनमें मजीद फर्क हो गया कि भाई कोई एक एक ब्रांच बन गई होम्योपैथिक की, ब्रांच बन गई, एक ब्रांच जो है वो एलोपैथिक की बन गई। होम्योपैथिक वाले कहते हैं कि जी एलोपैथिक का जो तरीका है ना ये गलत तरीका है, इससे जो है वो फायदा नहीं होता, इससे नुकसान होता है, और एलोपैथिक वाले कहते हैं कि होम्योपैथिक तरीका जो है ये सही नहीं है, ये गलत है, इससे जो है वो नुकसान होता है, ठीक है ना। अब आप उसकी बात माने कि आप इसकी बात माने, कैसे मानेंगे कि हम होम्योपैथिक वाले सही कह रहे हैं कि एलोपैथिक वाले सही कह रहे हैं, उसके लिए आपको तहकीक करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको उनके दलाइल देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, और उसके लिए आपको उनके मरीज भी देखने पड़ेंगे कि मरीजों का क्या हाल है ना, कौन से मरीज, किसके मरीज जो है ना वो इधर सेहतमंद हो रहे हैं और किसके मरीज इधर सेहतमंद हो रहे हैं, क्या इधर वाले सेहतमंद हैं कि उधर वाले सेहतमंद हैं। तो आपको ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, तब पता चलेगा कि भाई किसका क्लेम जो है वो सही है। उसी तरीके से बरेलवी और देवबंदी का भी यही यही मामला है कि आपको उनके क्लेम्स को देखना पड़ेगा कि वो कौन सच्चा क्लेम कर रहा है, कौन झूठा क्लेम कर रहा है। तो जाहिर है सच्चा और झूठा मालूम करने के लिए आपको ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि कुरान मजीद और हदीस मुबारका से किन का क्लेम जो है वो ज्यादा मैच करता है और किन का क्लेम जो है वो कम मैच करता है। और फिर आपको मजीद आपको जो है वो उनके फॉलोअर्स को भी देखना है कि भाई इनकी हरकतें ज्यादा शरीफाना हरकतें हैं कि उनकी हरकतें ज्यादा शरीफाना हरकतें हैं, ठीक है ना। तो जब आप ये सारी चीजें देखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। चले क्लास तो हमारी ऐसी खत्म हो जाती है, 15 15 मिनट रह गए। तो बिदत और खुद राय का मतलब होता है कि अपनी राय के मुताबिक कोई काम कर, अपनी मर्जी से, अपनी राय, अपनी ओपिनियन, ठीक है, कुरान और सुन्नत के ओपिनियन नहीं बल्कि अपने ओपिनियन। तो ऐसा कोई अमल जो है ना वो कितना ही अच्छा नजर आए वो मकबूल नहीं है। इस आयत में सही व अमल के साथ लफ्ज सायहा बढ़ाकर, ठीक है, लफ्ज सायहा व सआलहा सायहा बढ़ाकर ये बतला दिया गया, ये बतला दिया गया है कि हर अमल और हर कोशिश ना मुफीद होती है ना इंद अल्लाह मकबूल, बल्कि अमल व सई वही मोतबर है जो मकसद यानी आखिरत के मुनासिब। और मुनासिब होना या ना होना ये सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान से ही मालूम हो सकता है, ठीक है ना। यानी जो अल्लाह ने बताया और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसी से पता चलेगा ना कि क्या चीज आखिरत के मुनासिब है और क्या चीज आखिरत के मुनासिब नहीं है। इसलिए जो नेक आमाल खुद राई और मनघड़त तरीकों से किए जाते हैं जिनमें बिदआत की आम रसूम शामिल हैं वो देखने में कितने ही भले और मुफीद नजर आए मगर आखिरत के लिए सही मुनासिब नहीं, इसलिए वो अल्लाह के नजदीक मकबूल हैं और ना आखिरत में कार आमद, ठीक है ना। यानी इस जुमले को हम अगर ना समझ पा रहे हो तो इसको इस तरह पढ़ें कि ना वो अल्लाह के नजदीक मकबूल हैं और ना वो आखिरत के लिए फायदा मंद, ठीक है। तो अल्लाह और उसके रसूल का बयान ये कैसे पता चलेगा, रोजे रसूल पे जाके पूछेंगे नबी अलैहिस्सलाम से कि भाई आपका क्या बयान था, क्या मेरा जो अमल है वो आपके बयान के मुताबिक है कि नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम की नऊज़ुबिल्लाह आगे से जवाब आएगा कि हाँ ये तुम्हारा अमल मेरे बयान के मुताबिक है और तुम्हारा अमल मेरे बयान के मुताबिक नहीं है। ऐसा होगा राइट, कोई ऐसा कर सकता है, ऐसा होता है कि रोजे पे जाकर के आप पूछ रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम से, नहीं होता। या अल्लाह के बयान के मुताबिक है तो आप अल्लाह से पूछ रहे हैं ओ अल्लाह बता दीजिए कि मेरा अमल आपके बयान के मुताबिक है कि नहीं है, अल्लाह के ऊपर से आवाज आती है कि हाँ मेरे बंदे में तुम्हारा अमल मेरे बयान के मुताबिक है। ऐसा तो नहीं होता, अल्लाह ताला ने निजाम रखा ही नहीं, ठीक है ना। ना तो कब्र में से आवाज आती है किसी के, चाहे वो अल्लाह के नबी क्यों ना हो, उनके कब्र में से आवाज नहीं आती। और ना जो है वो अर्श पर से आवाज आती है कि हाँ मेरे बंदे तुम्हारा अमल सही है या गलत है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि बयान के मुताबिक है, ठीक है ना। अब जाहिर है हमारे जैसा अगर कोई उससे पूछा जाए तो वो जवाब देगा किताबों से पता चलेगा, ठीक है, किताबों से पता चलेगा, यानी अल्लाह की किताब और जो है वो हदीसों की किताब, कुरान और हदीस से पता चलेगा, ठीक है। लेकिन कुरान और हदीस का एक्सपर्ट क्या हर बंदा बन सकता है कि वो कुरान मजीद और हदीस मुबारक के अंदर जो है वो किस चीज के बारे में क्या बयान है उसकी सारी तफसील जो है वो राइट, क्या हर बंदा ये तफसील हासिल कर सकता है कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, हाउस वाइफ है, या कोई और इस किस्म का प्रोफेशन करती है, या कोई और काम करता है या करती है, तो क्या वो कुरान और हदीस का भी एक्सपर्ट बन जाएगा, नहीं, ठीक है ना। कुरान मजीद और हदीस मुबारक का एक्सपर्ट बनने के लिए तो उसी के अंदर जिसने तफसीली उलूम और मुस्तकिल उलूम हासिल किए होंगे वही वाकिफ हो सकता है कि अल्लाह का बयान और नबी का बयान क्या है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को उलमाए कराम कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग होते हैं वो अपने अपने फील्ड्स के काम कर रहे होते हैं, वो उलमाए कराम नहीं होते क्योंकि उन्होंने फुल टाइम जो है वो किसी और चीज की तालीम हासिल करी होती है, ठीक है। तो उलमा से पता चलेगा कि अल्लाह का बयान किया है और नबी अलैहिस्सलाम का बयान किया है, ठीक है। तफसीर रूहुल मानी ने सायहा की तशरीह में सई के मुताबिक सुन्नत होने के साथ ये भी लिखा है कि इस अमल में इस्तकामत भी हो, यानी अमल मुफीद मुताबिक सुन्नत भी हो और इस पर इस्तेकामत और मदावमत भी हो। बदनज़मी के साथ कभी कर लिया कभी ना किया, इससे पूरा फायदा हासिल नहीं हो। ठीक है, तो किसी चीज को आखिरत के लिए फायदेमंद बनाने के लिए उसका सुन्नत के मुताबिक होना भी जरूरी है। सुन्नत के खिलाफ होगा तो वो मकबूल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो तफसीर रूहुल मानी में एडिशनल बात लिखी है वो ये है कि पूरा फायदा हासिल करना, ठीक है, उसके लिए मुदावमत भी जरूरी है, यानी उसको कंसिस्टेंटली भी करना जरूरी है। ठीक है, वरना पूरा फायदा हासिल नहीं होगा। हाँ, थोड़ा फायदा हासिल हो जाएगा लेकिन पूरा फायदा हासिल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज को कंसिस्टेंटली नहीं किया तो वो अमल रद्द कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो सुन्नत के मुताबिक है तो रद्द नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन उसका फायदा आपके लिए थोड़ा सा थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई सवाल इस पूरे कॉन्सेप्ट टॉपिक के बारे में, वरना हम आगे चलते हैं। इस मौके पर एक आयत जो है ना वो याद रखनी बड़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना वो इस दौर के अंदर खुसूसन काफिरों के अमल को, जो नेकी जो के भले नजर आते हैं, ठीक है ना, जैसे मजलूमों के हक में मुजाहरे करना, जैसे कि आजकल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, फलस्तीन के, गजा के जो मजलूम है जिनके ऊपर बमबारी की जा रही है, छोटे छोटे बच्चे और औरतें और है ना सिविलियंस जो है वो मर रहे हैं, तो अब इसके हक में जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त काफिर जो है वो खड़े हुए हैं, खुसूसन अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यूरोप के अंदर बहुत बड़ी तादाद में काफिर जो है ना वो फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या उनका ये अमल जो है फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे करना, क्या ये अमल उनके आखिरत में भी उनकी निजात का सबब बन जाएगा? नहीं, अगर वो तौबा करके मुसलमान नहीं होंगे, अपना अकीदा सही नहीं करेंगे, तो आखिरत में उनके इस पूरे के पूरे अमल का कोई फायदा नहीं है, कोई उनको फायदा नहीं हो रहा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वाकई इखलास के साथ वो मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं और मजलूमों की हिमायत कर रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनको इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे, ईमान लाने की तौफीक अता फरमा दे, फिर ठीक है, फिर जो है वो आखिरत में उनको फायदा हो जाएगा, वरना फायदा नहीं होगा। ठीक है, एक हदीस जो आयत या आज आप लोगों को बताना चाह रहा था वो थी सूरह गाशिया 30वें पारे के अंदर, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल अता का हदीस उल गाशिया वजूहु यौम इज़न खाशिया आमिलतुन नासिबा। ठीक है, कि क्या आप तक जो है वो गाशिया की हदीस पहुंची, गाशिया की बात पहुंची, वजूह कुछ ऐसे चेहरे होंगे उस दिन कयामत के दिन, ठीक है, जो कि खाशिया होंगे यानी झुके हुए चेहरे होंगे, और आमिलतुन नासिबा इतने मेहनत करके आए होंगे वो कयामत के दिन कि वो उनके यानी मेहनत के मारे जो है ना वो उनके बदन झुके हुए होंगे, और राइट, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया तस्ला नहरन हामिया, ठीक है, उनको जो है वो गर्म पानी के अंदर फेंक दिया जाएगा, आग के अंदर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने जो ये मेहनतें करी थी ना, ये मेहनतें अल्लाह को राजी करने के लिए करी थी, लेकिन उनको कयामत के दिन आग में फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह को राजी करने के लिए यानी इखलास के साथ उन्होंने जो है ना वो नेकी करने की कोशिश करी, तो फिर आग में क्यों फेंक दिया जाएगा? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लेकर के आए थे, वक्त के नबी के ऊपर ईमान नहीं लेकर के आए थे, और आज के वक्त का नबी कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो मेहनतें करने से जो है वो आखिरत का अजाब नहीं टलता, आखिरत का अजाब ईमान लाने से टलता है। ठीक है, और आज जो है ना वो दुनिया के अंदर क्योंकि मुसलमानों का अपना इल्म जो है वो नाकिस हो चुका है, और फिर मीडिया जो है ना वो फुल फ्लेज जो है वो मुसलमानों को ईमान से बाहर निकालने की मेहनत कर रहा है। ठीक है, मुसलमानों को ईमान से जो है ना महरूम करने की मेहनत जो है वो हर लेवल के ऊपर की जा रही है, तो इस वजह से जो है ना वो काफिरों के इन अमलों को बहुत ही मुजैन बना करके पेश किया जा रहा है, ताकि मुसलमान जो है ना वो उनके लिए भी जन्नत के फैसले कर लें अपने दिल के अंदर, यहाँ भी ये भी जन्नत में जाएंगे। ठीक है, और उससे जो है ना वो उनका, वो तो जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन ये मुसलमान जो है ना इसका ईमान खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर ये अपने जहन में ये फैसला करके बैठ गया कि बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लाए, लेकिन नेक अमल तो कर रहे हैं, मजलूमों की मदद तो कर रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं, तो इस वजह से ये भी ईमान, ये भी जन्नत में जाएंगे, तो मुसलमान का अपना ईमान खत्म, ठीक है। आपका जो सवाल है इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, तो अब दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला। ला तजअल, मत बनाओ, मअल्लाहि अल्लाह के साथ, इलाहन आखर, कोई दूसरा माबूद। इलाह कहते हैं माबूद को जिसकी इबादत की जाए, ठीक है ना, और आखर का मतलब होता है अनदर, कोई और, ठीक है, तो मत बनाओ अल्लाह के साथ कोई और माबूद। फ तक, अगर बनाओगे ना तो क्या होगा, फा का तर्जुमा यहाँ पर उर्दू में ऐसे होगा कि अगर तुमने बना लिया ना तो फिर ये होगा तक उदा, बैठे होगे तुम मजमूमन मखजूलन, ठीक है ना, मजम्मत किए हुए और मखजूल यानी बेकस हो करके, बिल्कुल यानी वेस्टेड हो करके तुम बैठे हुए होगे, अगर तुमने अल्लाह के साथ किसी और को माबूद बना लिया यानी शिर्क कर लिया, ठीक है। वकवा रब्बू का, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है, ठीक है ना, तुम्हारे रब ने जजमेंट दे दी है, कजा काजी का लफ्ज जो के जजमेंट देता है, फैसला करता है, तो तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है, अन ला ताबुदू के नहीं इबादत करो, इल्ला याहू, सिवाय उसकी, अल्लाह की, ठीक है ना, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम जो है ना वो किसी दूसरे की इबादत नहीं कर सकते, ठीक है। वह बिल वालिदैन एहसानन, ठीक है ना, और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, इबादत ना करना शुरू कर देना वालिदैन की, इबादत तो सिर्फ अल्लाह की करनी है, ठीक है ना, और वालिदैन के साथ एहसान का अच्छा मामला करो, ठीक है ना, नरमी का मामला करो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वो सारे के सारे मुसलमान जो है वो बड़े कंफ्यूजन के शिकार होते हैं कि भाई ओ वालदैन की जो है वो हर बात मानना जरूरी है, अल्लाह की बात के खिलाफ भी अगर वो बात करें तो भी मानना जरूरी है, तो हमें फिर इबादत का मफहूम ही नहीं पता, इस वजह से हम ये कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं, हमारे नजदीक इबादत जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ना है, ठीक है ना, बस नमाज इबादत है और बस बाकी सारी चीजें। अब वालदैन जो है वो ये तो नहीं कह रहे कि मेरे सामने आके नमाज पढ़ो, मुझे सजदा करो, तो इस वजह से जो है वो हमें वालदैन की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमें नमाज पढ़ने के लिए कोई थोड़ी कह रहे हैं अपनी तरफ, नहीं, इबादत जो है वो सिर्फ नमाज को नहीं कहते, ठीक है ना, इबादत जो है ना वो किसी का ऐसे हुक्म मानना कि उसके हुक्म के सामने किसी दूसरे, उसके हुक्म के खिलाफ किसी दूसरे का हुक्म ना मानना, ये इबादत होता है, ठीक है ना। इबादत की तारीफ क्या है, अल्लाह करे आप सब जो है उसको लिख रही हूँ, ठीक है, इबादत की तारीफ ये है कि किसी का हुक्म ऐसे मानना कि उसके खिलाफ किसी दूसरे का हुक्म ना माने, इसको इबादत कहते हैं, ठीक है। तो क्या हम अल्लाह की इबादत करते हैं, काश के करना शुरू हो जाए कि अल्लाह के हुक्म के सामने हमने किसी दूसरे का हुक्म नहीं मानना, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, सामने से मुराद यहाँ पर खिलाफ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ मैंने किसी का हुक्म नहीं मानना, ठीक है, अगर वाकई हम ऐसा करते हैं तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक है ना, और अगर हम ऐसा नहीं करते बल्कि कुछ चीज़ों में अल्लाह का हुक्म मानते हैं, कुछ चीज़ों में हम किसी और का हुक्म मानते हैं जो कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो बेशक, लेकिन हम मानते हैं फिर भी, तो इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह की इबादत नहीं करते बल्कि हम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, ठीक है ना, जिसका हुक्म अल्लाह के हुक्म के खिलाफ मान रहे होते हैं ना, हम उसको अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना यानी सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना, उसके खिलाफ किसी दूसरे का हुक्म ना मानना। वालदैन के साथ फिर क्या करना भाई, वालदैन के साथ एहसान का मामला करना, एहसान का मतलब ये नहीं है कि उनके जो है ना वो सारे हुक्मों को मानना, बेशक वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ क्यों ना हुक्म दे रहे हो, ये मतलब नहीं है एहसान का, ठीक है। इम्मा यबलुगन्ना किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, इम्मा अगर, यबलुगन्ना पहुंच जाए इंदका तुम्हारे पास, अलकिबरा अहदुहुमा, उनमें से कोई एक। अलकिबरा का मतलब बुढ़ापा, बुजुर्गी, बुढ़ापा, ठीक है, उनमें से कोई एक बुढ़ापे तक पहुंच जाए, औ किलाहुमा, या दोनों बुढ़ापे तक पहुंच जाए, ठीक है ना। अगर तुम्हारे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुंच जाएंगे, फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम उन दोनों को उफ भी ना कहना, ठीक है ना। वला तनहर हुमा, और ना उनको झिड़कना, ठीक है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ जो है ना वो कौले करीम कहना, उन दोनों को कौले करीम कहना। करीम कहते हैं अदब के साथ बात करना, जिसको हम आज की जुबान में कहते हैं जी जी जी, ठीक है ना। क्या क्या क्या, ये भी अदब के फॉर्म्स है। जी, अदब से जी, ठीक है ना। फरमाइए जी, कहिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या आपका, क्या आपकी खदमत कर दूं, क्या आपके लिए ला दूं, ठीक है। तो वो कौलन करीमा, यानी उनके सामने बस जी जी करना, ठीक है ना, कोई और उल्टी सीधी बातें ना करना। वक्फिर लहुमा जना हज़ुल्ली मिन रहमत, ठीक है, और झुका देना उन दोनों के लिए जनाह दुल्ली। जनाह जो है ना वो कंधों को कहते हैं, विंग्स। अगर कोई बर्ड हो तो उसकी विंग्स को जो है वो जनाह कहेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास तो विंग्स नहीं होते, तो हमारे जो कंधे हैं, कंधों के ऊपर अगर पर लग जाते तो वो विंग्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अपने कंधों को जो है ना वो दुल यानी जिल्लत, जिल्लत कहते हैं ना, पस्ती, झुकी हुई कोई चीज, उसको जलील कहते हैं, ठीक है। तो उनके सामने जो है ना वो अपने कंधों को झुका के रखना, मिनर रहमा, नियाजमंदी के साथ, रहमत के साथ। वकुल, और कहो, रब इरहम हुमा, ए मेरे रब इरहम हुमा, रहम कीजिए इन दोनों के ऊपर, कमा रब बयानी सगीर, जैसे कि उन उन्होंने मेरे मेरी तरबियत करी, जैसे कि उन्होंने मेरी तरबियत करी जब मैं छोटा था, सगीर था, ठीक है। अल्लाह करे हम अपने औलाद की वाकई तरबियत करें, ताकि जब हमारी औलाद हमारे लिए दुआ करे ना, तो वो तो दुआ में ये कहेगी जैसे उन्होंने मेरी तरबियत करी, अब हमने उसकी जो है ना इतनी बुरी तरबियत करी कि वो जो है वो दरिंदा बन गया, या वो जो है ना वो कोई बहुत ही किस्म का, घटिया किस्म का, जालिम किस्म का इंसान बन गया, या बदतमीज किस्म का इंसान बन गया या बन गई, ठीक है ना। तो अब जो है ना बच्चे साहब जो है वो दुआ मांग रहे हैं, रब्बिर हम हुमा कमा रब यानी सगीरा, जैसे उन्होंने मेरी बचपन में तरबियत करी थी, ठीक है। तो फिर तो हमने तो बुरी तरबियत करी, तो ऐ अल्लाह आप मेरे उनके साथ भी बुरा मामला कीजिए जैसे उन्होंने मेरे साथ बुरा मामला किया था, ठीक है। तो उल्टा कहीं हमारे गले ना पड़ जाए। अब बाकी ये कि तरबियत करना जो है वो उसके अंदर सिर्फ ये नेक बातें सिखाना नहीं होता, बाकी चीजें, खाना पी खिलाना पिलाना, उनके जो है वो दूसरी जरूरियात का एहतमाम करना, तरबियत में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन उर्फ आम के अंदर तरबियत का लफ्ज जो है वो अच्छी तालीम और अच्छा यानी इखलाक, अखलाक सिखाना, ठीक है ना, ये तरबियत की जो है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। खाना पिलाना तो बिल्ली बिल्ली भी अपने बच्चे को खिला देती है, ठीक है ना। और जो है वो कोई भी जानवर, कोई भी चीज जो है ना अपने और औलाद को जो है वो खाना पिलाना तो खिला रही होती है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात जो है ना वो सिर्फ ये खाना पिलाने वाले तरबियत का मुकल्लफ तो नहीं बनाया गया, वो तो फिर अखलाक और अच्छी जो जो फायदेमंद दुनिया और आखिरत के लिए तालीम है, तो उसका भी एहतमाम करते हैं अपनी औलाद के लिए। तो ये फिर इस दुआ से सही मानों में फायदा उठाने के लिए हमें अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत की फिक्र करने की भी जरूरत है। रब्बुकुम अलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब ज्यादा जानता है, बिमा फी नुफूसिकुम, जो तुम्हारे जानों के अंदर है, यानी जो तुम्हारे सोच के अंदर है, तुम्हारा रब तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह जानता है, ठीक है। इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम नेक होगे, सालेह होगे, फइन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, तो बेशक वो अव्वाबीन के लिए मगफिरत करने वाला है, ठीक है ना, वो अव्वाबीन की मगफिरत करने वाला है। अव्वाबीन कौन होते हैं? रुजू करने वाले, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, ठीक है ना, यानी गलती हो जाए तो अल्लाह से तौबा करने वाले, माफी मांगने वाले, ठीक है ना। और जब कोई उनके ऊपर नेमत हो तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं शुक्र करने के लिए, ठीक है ना। गलती हो जाए तो तौबा के साथ रुजू करते हैं, नेमत मिल जाए अच्छा मामला हो जाए तो शुक्र के साथ रुजू करते हैं, और अगर कोई मुसीबत हो जाए तो मदद के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। ऐसे लोगों को अवाबीन कहते हैं, ठीक है। किसी ने पूछा कि डज दिस नॉट इंक्लूड लव विच दे गेव अस, डज दिस नॉट इंक्लूड लव? नो, ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स लव, ठीक है। लव जो कि उन्होंने हमें दिया, अब लव देने का मतलब क्या है? लव दिया है ना, यानी बोसा दिया, प्यार किया, लिपटाया, चिमटाया, ठीक है। तो जाहिर है ये उसका हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को इस तरीके से लिपटाना, चिमटाना, प्यार करना और अच्छी बात करना उसके साथ, ये भी उसकी तरबियत का जरिया बन रहा होता है। ये सब उसकी तरबियत का हिस्सा बन रहे होते हैं, ठीक है ना। उसकी उसकी पर्सनालिटी जो है वो स्ट्रांग हो, उसकी पर्सनालिटी जो है वो यानी स्टेबल हो, है ना, और दूसरों को लव देने वाली हो। अगर माँ बाप से उसको लव मिलेगा तो वो दूसरों को भी मोहब्बत देगा या देगी, ठीक है ना। और अगर जिसको जो है वो मार पीट और सड़ी सड़ी जली कटी जो है वो बातें सुनने को मिलती रही बचपन में, उसको फिर वो समझ में नहीं आएगा कि अच्छा मैं अगले बंदे को कैसे मोहब्बत दे सकता हूँ। वो आगे भी फिर वो सड़ी कटी जली यही करेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जिस तरबियत के अंदर जो माँ बाप ने लव दिया होता है, जब मोहब्बत दी होती है, तो वो उसका बड़ा अहम जुज होता है, ठीक है। तो अगर आपकी मुराद लव से यही थी, बाकी लव से मुराद जो है वो और भी चीजें ली जा सकती हैं इसके अंदर, कि भाई मतलब तो हमारी दुनिया के फायदे और आखिरत के फायदे के लिए उन्होंने हमें चीजें सिखाई, तो ये भी तो लव का हिस्सा है ना। अगर ये नहीं सिखाई तो फिर खाली प्यार करना, लपटाना, चिमटाना और सिखाए वखाए कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फिर वो तो फिर अधूरा लव हो गया ना फिर। अच्छा, उन्होंने आखिरी बस ये सवाल लेकर, क्योंकि टाइम खत्म हो गया क्लास का, कि होम स्कूलिंग में जो बच्चे चिढ़ जाते हैं बाहर ना ले जाने की वजह से, ना कोई दोस्त हो ना किसी के घर आना जाना हो, तो फिर कैसे इन चीजों को हैंडल करें? होम स्कूलिंग में जो बच्चे चिढ़ जाते हैं क्योंकि अब क्योंकि बाहर स्कूल तो वो जा नहीं रहे होते हैं, तो और उनके जो है वो दोस्त नहीं होते हैं, तो फिर कैसे इन चीजों को हैंडल करें, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल के एनवायरनमेंट से निकाल करके घर के एनवायरनमेंट के अंदर उनको उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर उनके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस पड़ रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स का नेगेटिव इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, क्योंकि टीचर जो है ना वो पढ़ा रहा होता है, सिखा रहा होता है, तो अगर उसके अपने अंदर जो है वो बुरे असरात हैं, बुरे नजरियात हैं, तो वो बच्चों में मुंतकिल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बुरा असर स्कूल के अंदर टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पड़ता है। दूसरा बुरा असर जो है वो करिकुलम बुक्स वगैरह के अंदर से पड़ता है, ठीक है। फिर तीसरा बुरा असर जो है वो जो माहौल के जो जिस माहौल से दूसरे बच्चे आए हुए होते हैं, उनके घरों के अंदर फिल्में चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, शराब चल रही है, मौसीकी और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा चल रहा है, तो वही सारी चीजें सीख करके आ रहे होते हैं, तो फिर आपके बच्चे को जो है वो वही चीजें फिर शेयर कर रहे होते हैं। टैब के ऊपर जो है वो गंदी चीजें दिखा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं फिल्म एक्ट्रेस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में या और इस किस्म के, तो ये तीनों जो है ना वो चीजें फिर स्कूल के अंदर जो है वो बहुत नेगेटिवली आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। तो इन इन नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए आप होम स्कूलिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। तो जब होम स्कूलिंग की तरफ आते हैं तो अब जो है ना वो बच्चा तो बहरहाल उसको फिर वो मिस करता है इन चीजों को, तो आपको जो है वो एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट उसके लिए करना होता है, ठीक है, कि उसको जो है ना वो फिर आउटडोर एक्टिविटीज दूसरे का उनका इंतजाम करें, और उसके लिए कुछ और मिलने जुलने वाले फ्रेंड्स वगैरह का आप एहतमाम करें, ठीक है। तो इसके बगैर होम स्कूलिंग जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो होम स्कूलिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इन अदर वर्ड्स, ताकि हम अपने जवाब की तरफ आए, वो क्या है, आपको इन असबाब को इख्तियार करना पड़ता है, ठीक है, कि उनके लिए ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज और ऑल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का एहतमाम करें। ये असबाब है, ठीक है। और जहां असबाब आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं या नामुमकिन हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं भाई, जहां असबाब मुश्किल या नामुमकिन, तो अब क्या करना, आपको पता है कि क्या करना होता है उसके बाद? ठीक है ना, तो वही करना हो, ठीक है, अल्लाह से यानी मुसब्बिबुल अस्बाब से डायरेक्ट, ठीक है ना, खूब अल्लाह ताला से मांगना, खूब अल्लाह ताला से जो है वो मदद मांगना, और उसके लिए अपने गुनाहों से तौबा करना, अल्लाह ताला को जो है वो राजी करना, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो अस्बाब मुहैया फरमा देते हैं। अल्लाह के खजाने के अंदर कोई कमी है? अस्बाब की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, तो अल्लाह को राजी करने की फिक्र करें ताकि अल्लाह ताला जो है ना वो, यानी ये तो बहुत ही छोटे किस्म के अस्बाब हैं, अल्लाह ताला से तो हर चीज मांगने के लिए, बड़े से बड़े अस्बाब जो है अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला एहतमाम फरमाते हैं, ये तो बहुत ही मामूली से अस्बाब है, कोई दोस्त मिल गया, कोई जो है वो पार्क शार्क का जो है वो इंतजाम हो गया, कोई जो है वो आउटडोर एक्टिविटी का आइडिया। अच्छा, आइडियाज इतने बेशुमार होते हैं, बल्कि आप तो उनमें से हैं जिनको कि हमने आइडियाज की लिस्ट भी भेजी हुई है, राइट, तो भाई बच्ची को जो है वो अगर घर के अंदर बच्ची है, ठीक है, तो वो तो और भी आसान काम है, लड़के के लिए मुश्किल होती है घर में बैठना, बैठना घर में टिकना, है ना, लड़की तो भाई अम्मा तो बेहतरीन दोस्त है लड़की की, ठीक है, तो अम्मा साहिबा जो है वो खुद क्यों नहीं दोस्त बन रही, खुद जो है वो सारी एक्टिविटीज क्यों नहीं कर रही। हाँ, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला और भी एहतमाम फरमा देंगे, लेकिन जब तक एहतमाम नहीं हो रहा तो उस वक्त तक जो है वो बहुत सारे काम है क्योंकि आप कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान करने वाले हैं, अल्लाह ताला से अच्छी तरह से रुजू करना चाहिए। माँ बाप को कोई भी इग्नोर करते हैं कोई भी बात पर, माँ बाप को भी इग्नोर करते हैं कोई भी बात पर, नहीं वो तो फिर एक लाइन से तो फिर आपको जवाब नहीं मिल सकता, वो तो बहुत सारी तफसील है उसके अंदर। जिसके वालदैन उनकी बचपन में तरबियत अच्छी तर जिन जिसके वालदैन ने उनकी बचपन में अच्छी तरबियत नहीं की, वक्त नहीं दिया, तो उन बच्चों के अपने माँ बाप के साथ सलूक का क्या दर्जा होना चाहिए? ये आयत जो है वो उसी के ऊपर दलालत करती है, ठीक है, इस आयत में सारा यही है, अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं कि जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छी तरबियत नहीं करी, बल्कि अच्छी तरबियत की इंतहा किया है, यानी सॉरी बुरी तरबियत की इंतहा किया है कि उनको काफिर बना दिया माँ बाप ने, माँ बाप ने उनको मुशरिक बना दिया, ठीक है ना, तो अपने परवरदिगार की रहमत देखें, परवरदिगार का हौसला देखें कि परवरदिगार उन माँ बाप के साथ जिन माँ बाप ने अपनी औलाद को जो है वो मुशरिक बनाया, काफिर बनाया, परवरदिगार उस औलाद को कह रहा है कि तुम अपने इन वालदेन के साथ भी जो है ना वो कौलन करीमा, इन वालदेन के साथ भी कौलन करीम, जिन्होंने तुमको मेरा दुश्मन बना दिया, जिन्होंने तुमको जो है वो मेरा मेरे नबी की मुखालफत सिखाई थी, मेरे नबी की दुश्मनी सिखाई थी, तुम उनके साथ भी अच्छा मामला करो, राइट, तुम उनके साथ भी अच्छा मामला करो, ठीक है ना, इसकी तफसीर यही है कि काफिर माँ बाप भी हो ना तो भाई काफिर माँ बाप अपनी औलाद को क्या मुसलमान बनाते हैं? नहीं, वो अपने औलाद को काफिर ही बना रहे होते हैं ना, ठीक है, तो रब जो है ना वो कितना करीम है, कह रहा है कि तुम उनके साथ भी अच्छा मामला करो, ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब जो है वो इसी आयत के अंदर और इसी की तफसीर के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।